कनेडा की जो ये चेन है इसके अंदर आपको नजर आ सकते हैं पिज्जाज।
यस
अच्छा, इसके ऊपर जी आप मिले जुले जो हैं कुछ आए हैं, वो कहते हैं जी जीटीए के कुछ जो स्टोर्स हैं, अबाउट 20 रेस्टोरेंट्स, सॉरी स्टोर्स नहीं रेस्टोरेंट्स जो हैं, उसके ऊपर आपको नजर आ सकते हैं फ्लैट ब्रेड पिज्जाज। और इसमें अब जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो बड़े स्केप्टिकल हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी कि टिम हॉर्टन्स एंड पिज्जा ये तो दो अलग अलग चीजें हैं, ये तो हम इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते और ये इनको तो बेचना ही नहीं चाहिए, दिस इज एब्सोल्यूटली इनसेन, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, पिज्जा स्टोर्स को अलग रहने दें। वो कहते हैं जी ना, वो कहते हैं हम अपना भाई अपना हम मेन्यू बढ़ा रहे हैं, यू नो हम अपना फूड चेन है तो हम अपना मेन्यू बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इनका पिज्जा जो है वो शेयर भी किया और उन्होंने कहा कि $7.99 का ये मिलता है, $7.99 का, विच इज अ वेरी गुड डील, अगर ये मिले तो इट्स प्रीटी गुड। तो कुछ लोग जो है बस मिले जुले जो हैं तासरात है, कुछ कहते हैं जो इसको पिज्जा स्टोर नहीं बनना चाहिए और कुछ कहते हैं कि नो द डील इज वेरी गुड, तो आई वुड डेफिनेटली गो। अच्छा जी, ये देखो जी, ए वैसे तो वड्डा मुल्क नहीं है लेकिन फिर भी बड़िया बड़िया गल्ला होंदिया ने ते हैं जी। तो ये एक ओटावा का होटल है, शैटो लॉरिए होटल, इसके अंदर एक बड़ी आइकॉनिक विंस्टन चर्चिल की पिक्चर, ये देखें जी आप जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो लगी हुई थी, और ये बड़ा ही जबरदस्त कैनेडियन जो फोटोग्राफर था यूसुफ कर्श, इसने ये 1941 में जब ये पार्लियामेंट हिल पे स्पीच कर रहे थे विंस्टन चर्चिल साहब, तो उस वक्त ये खींची थी। और उसने उस वक्त बड़ा ये ड्रामा हुआ था कि ये हमेशा इनके हाथ में सिगार होता था, विंस्टन चर्चिल के हाथ में, तो इन्होंने उसके हाथ से फोटोग्राफर साहब ने वो सिगार ले लिया था तस्वीर खींचने के लिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा माइंड कर लिया था इस बात पे, तो बड़े गुस्से में फिर वो आके बैठे थे। तो वही एक्सप्रेशन जो है उसने कैप्चर कर लिया था उस फोटोग्राफ में, जिसके के बारे में कहा जाता है कि वो जो है वो शो करता है, वो जो उनका गुस्सा है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो वॉर टाइम फीलिंग्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, और उनका जो पॉस्चर है वो भी यही शो करता है। तो इसीलिए इस पिक्चर का नाम रखा गया था द रोरिंग लायन। तो अब ये होटल कहता है जी, कुछ दिन पहले हमने देखा कि कुछ वो तस्वीर जो है वो टेढ़ी सी लगी हुई थी, जब हमने उसको सीधा करने के हम पास गए तो हमने देखा कि इस आदमी की यूसुफ कर्श की जो बाकी की भी जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हमारे होटल में लगी हैं उससे डिफरेंट है। जब हमने ये देखा तो हमें पता चला कि किसी ने ये दो नंबर तस्वीर लगा दी है और असल पिक्चर चोरी करके ले गया वो। तो असल जो तस्वीर थी, ये फोटोग्राफ थी, उसने चोरी कर ली है, और क्योंकि बाकी का जो, क्योंकि उन्होंने फाइंड आउट किया फ्रेम से, क्योंकि सारी तस्वीरों का एक जैसा फ्रेम है तो इसका फ्रेम थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, अब इस जो होटल है उसके अंदर और भी बहुत सारे यूसुफ कर्श के ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो हैं वो लगे हुए हैं, इनका जो रीडिंग लाउंज है उसमें। तो अब फॉर द टाइम बींग तो उन्होंने वो तमाम के तमाम जो है फोटोग्राफ्स उतार लिए हैं, और उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमने बिठाई है, और जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा तो फिर हम फिर से हम जो है ये हाँ अब देखे ना, इतने फेमस आदमी,
अब ये भी नहीं पता कि कब किए है,
हाँ कब किए। अब आपने ये इतने फेमस आदमी की एक ऐसी आइकॉनिक तस्वीर, यानी कि हो ना कोई फूल बूटे होए, कोई दरख्त होए, कोई वो होए, तो फिर तो कोई बात भी उसमें आप थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे। अब इतने बड़े आदमी की एक तस्वीर आपने की, अब आप बेचेंगे भी इसको कैसे, यू नो अनलेस एंड अनटिल जो है कोई प्राइवेट जो कलेक्शंस में अपने लोग रखते हैं उनमें से किसी बड़े प्राइवेट कलेक्टर को पता चले और वो आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होए और आप करें, तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क थिंग।
तो जो है ये जो आप ये देख लेना कि जो यहाँ के प्रोफेशनल टीम्स हैं वो जब जीतती हैं तो रिंग्स मिलती हैं, तो रिंग्स चुरा लेते हैं,
चुरा लेते हैं,
चाहे एनएचएल का है, स्टैनली कप की रिंग है, या आप फुटबॉल की रिंग है, या बेसबॉल की रिंग है, वो जो रिंग्स मिलती हैं वो चुरा लेते हैं।
तो चलो मजे भाई, वो तो मेल्ट हो जाएंगी ना,
आपका सवाल यही है, मेल्ट होने के बाद तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी,
नहीं रहेगी। लेकिन ये तो अब तस्वीर है ना, अब ये तस्वीर आप किधर बेचोगे। बहरहाल जी,
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जी
अच्छा जी, मलेशिया के अंदर तो आज वो कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मलेशिया बहुत बड़ा उन्होंने आज एक डिसीजन लिया, इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रजाक उनको 12 साल की जेल पे भेजा है, और इनके ऊपर जो थे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने 1 मिलियन मलेशियन जो हैं पैसे हैं वो स्टेट फंड के थे जो कि इन्होंने करप्शन में उड़ा दिए, और इनकी आज कन्विक्शन हुई है। अच्छा, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने बड़े लीडर को जो है उसकी उसको करप्शन चार्जेस में पकड़ा गया है, और कहा गया है कि तुमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग में ये पैसे जो हैं वो किए हैं। तो इनको कजंग जो प्रिजन है आउटस्कर्ट्स ऑफ क्वालालंपुर, जो इनका कैपिटल है उसमें इनको भेजा गया है। फाइव मेंबर जो पैनल था उसके सामने इन्होंने अपनी एक पिटीशन डाली थी कि भाई इसको रद्द कर दें इसको अपील को, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है यानी कि जो हाई कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको होल्ड किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी अपील के अंदर कोई मैरिट नहीं है और ये बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर है, तो इसलिए आपको छोड़ा नहीं जा सकता और आपको जो है 12 ईयर प्रिजन जो है वो दी जाती है। तो इनको भेजा गया, हालांकि ये बड़े स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर समझे जाते थे, तो बड़ा ऑपोजिशन ने और जो मलेशिया के लोग हैं उन्होंने भी बड़ी इस चीज की तारीफ की है कि ठीक है जी, नो बडी शुड बी अबव द लॉ, तो जो कोई मनी लॉन्ड्रिंग या गलत काम करेगा उसको करेंगे। अच्छा जनाब, आज यूरोपियन ड्राउट ऑब्जर्वेटरी जो है उसने बड़ी खौफनाक एक रिपोर्ट दिया और उसने कहा, हाँ जी उसने पेश की है और उसने कहा 500 ईयर्स में भी ऐसा ड्राउट यूरोप में नहीं आया था जैसा कि अब आने वाला है और जमीन बिल्कुल सूखी और बंजर और क्रैक्ड पड़ी हुई है। और वो कह रहे हैं जी कि ये इसको बड़े और भी इसके नुकसान हैं, उसके नुकसान ये हैं कि ये आइलैंड शिपिंग रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करेगा और कुछ क्रॉप्स जो हैं उसको भी बर्बाद करेगा। 47% ऑफ यूरोप जो है इस वक्त उसकी सॉयल जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। 17% ऑफ रीजन जो है वो स्टेट ऑफ अलर्ट पे है क्योंकि यहां पे कोई वेजिटेशन नहीं फिर हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि क्रैक्स पड़े हुए हैं जमीन के अंदर। तो वो कहते हैं जी कि ये कंडीशन शायद 47% यस ऑफ यूरोप, यस ऑफ यूरोप इज सफरिंग। और वो कह रहे हैं जी कि ये कंडीशन शायद थोड़ी सी इंप्रूव होएगी बाय द टाइम वी रीच नवंबर, बट इट्स गोइंग टू बी टू लेट और क्रॉप्स जो हैं उनको जो है बड़ा जाहिर है नुकसान है, वो हो ही नहीं सकती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा जी कि समर क्रॉप्स जो थी वो 16% नीचे आ गई हैं और सोयाबीन और सनफ्लावर्स की यील्ड जो है वो भी 15% और 12% रिस्पेक्टिवली जो है नीचे आई है। तो अब इसलिए और भी ज्यादा शोर मच रहा है कि भाई क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाए और ये जो है इसका जो डैमेज हो रहा है वो उसको किया जाए, क्योंकि अब तो स्विट्जरलैंड से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि उनके ग्लेशियर्स जो हैं बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। तो अब ये बड़ा कंसर्न जो है यहां पे हो गया। अच्छा जी, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जो हैं नेड प्राइस साहब, उन्होंने आज कहा है जी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान से बड़ी खुश है कि वो जो अब इनकी न्यूक्लियर डील थी जो कि हमने आपको बार बार हम बताते थे कि ट्रंप साहब जो थे उन्होंने खत्म कर दी थी, तो अब वो उसके ऊपर बात बहुत अरसे से यूरोपियन यूनियन कर रही थी और यूरोपियन यूनियन ने अभी लास्ट वीक एक ड्राफ्ट भेजा था और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूटली लास्ट ड्राफ्ट है जो कि हम भेज रहे हैं, और अगर तो ईरान ने इसके ऊपर अग्री किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर जो सैंक्शंस अमेरिका ने इसके ऊपर लगाई थी लास्ट प्रेसिडेंट के वक्त में, अमेरिकन प्रेसिडेंट के वक्त में, तो वही चलेंगी। लेकिन जो है ईरान ने उस चीज को मान लिया। ये जो डील थी इसका नाम दिया गया था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और 16 मंथ्स से बैक टू बैक ये जो हैं ये चल रही थी बातें। 2015 में ये जो था इन्होंने ट्रंप साहब ने इसको प्लान को कहा था कि नहीं ये बड़ा बकवास प्लान है तो हम इसमें नहीं बैठेंगे। 2018 में फिर से इसको जो है प्लान को आगे लेकर गए थे, लेकिन इस बीच में यूरोपियन यूनियन कहता रहा कि भाई ईरान जो है अपना जो न्यूक्लियर जो है एसेट्स उनको बढ़ाता चला जा रहा है। बहरहाल इन्होंने बहुत बातें मान ली हैं। नेट प्राइस जो है यूएस डिपार्टमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी एनकरेजिंग इन्होंने बात की है, खासतौर पे इनकी ईरान की एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक डिमांड थी कि इरानियन जो ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं जो कि यूएसए की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के ऊपर हैं उसका नाम हटाया जाए। तो ईरान ने अब इस बात से वो पीछे हट गए हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगर उसका नाम तुमने उसके ऊपर रखना टेररिस्ट लिस्ट पे लेकिन बाकी हमारी बातें मानोगे तो फिर ठीक है। तो वो दोनों तरफ से विन विन यानी सिचुएशन है, अमेरिका की भी बात रहेगी। तो अब वो कहते हैं जी कि अब इस प्लान के ऊपर अब आगे लेके जाएंगे और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जो कुछ ईरान ने जो कुछ हमने उसको प्रपोजल लिख के भेजा था जो जो उसने डिमांड्स की हैं वो रीजनेबल हैं वो ठीक हैं तो हम भी उसको मानने को तैयार हैं। तो आज जी यूएस ने भी कहा है कि चलो ठीक है फिर अब इसके ऊपर बात होगी। अब बात जो है कितनी जल्दी होगी और कितना उस पर अमल होगा क्योंकि सबसे बड़ा तो उनका डिमांड यही है कि सैंक्शन हटाओ हमारे पर से, तो अब ये सैंक्शन हटाएंगे या नहीं अब देखेंगे क्योंकि वो अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर कैप कर रहे हैं तो फिर सैंक्शन तो इनको हटानी पड़ेगी। तो ये रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है उसने ये जो कोरियन ऑटोमेकर है हायंडाई उसको कहा है कि आपका ये जो प्लांट है अमेरिका के अंदर एलाबामा जो आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर आप जो हैं चाइल्ड लेबर कर रहे हैं और इसके ऊपर सबसे पहले इतला जो थी रॉयटर्स ने दी थी नवंबर के अंदर और उनको कहा था कि ये आप अपना जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है उसके नोटिस में जब आई तो उन्होंने कहा जी आप अपने ये सारे रेगुलेटरी जो वायलेंस है इसको खत्म करें। अच्छा, इसमें उन्होंने पता किया था रॉयटर्स की रिपोर्ट ने कि माइनर्स एज यंग एज 16 ईयर्स इनकी इस ऑटो फैक्ट्री के अंदर एलाबामा में काम कर रहे हैं। तो वैसे तो हैंडाइन की तरफ से जो ईमेल आई थी उसने कहा था कि जी हम किसी किस्म का इलीगल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को मानते नहीं हैं और हम सिक्योर नहीं करते हैं ये बच्चे या लोग जो हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं, ये एक थर्ड वेंडर है जो कि करता है। अब उस थर्ड वेंडर का इन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो हमें सोर्स करके देते हैं लेबर।
फैक्ट्री इज इन अलाबामा।
हाँ हाँ, एंड इट इज हैंडाइज फैक्ट्री, राइट। तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपकी है तो आप इसको अब करें। तो अब देखेंगे ये क्या करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको हैंडाई कहते हैं, कुछ लोग होंडे कहते हैं।
नहीं,
तो हैंडाई
हैंडाई हैंडाई इज द राइट वर्ड।
या लेकिन अब मैंने बहुत सारे वो अमेरिकन चैनल्स कल मैं देख रही थी तो उसपे होंडे भी कह रहे थे वो लोग।
होंडा दूसरी
नहीं, होंडा है वो, ये होंडे। तो अब भरत जी हैंडाई हम तो कहते हैं, तो ठीक है फिर। या ऐसे। अच्छा जी, और बड़ी सारी आज रेवलेशन हुई है, और रेवलेशन जो है वो ये है कि एप्पल में दो लड़के काम करते थे, एक का नाम था जायो लैंग जैंग और जो दूसरा था उसका नाम था, एक और भी लड़का था उसका नाम था जिग होंग चेन। ये जो थे इसके जो सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोग्राम था उसके सेक्शन में ये काम करते थे। तो उनके ऊपर जो है एक प्रोब बिठाई गई थी कि ये जो इंजीनियर्स थे इन्होंने आईफोन की ये सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोग्राम की जो टेक्नोलॉजी थी ये चोरी करके, और अचानक से इन्होंने कहा कि हम जो है आपको छोड़ के और अब हम चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जा रहे थे तो एन उसी वक्त जो है इनको पकड़ लिया था, क्योंकि ये चाइना में सेल्फ ड्राइविंग कार स्टार्टअप एक शुरू किया जा रहा था। एक बहुत बड़ा चाइनीज टाइकून है जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया, वो चलाना चाह रहा था, तो इनको पकड़ लिया। अच्छा, पहले तो इसने जो है ये जायलोंग जैंग जो है इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर इसको कहा कि भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लंबे तुम अरसे तक एप्पल के खिलाफ तुमने ये काम किया तो इधर सड़ोगे। फिर इसने कहा जी कि ठीक है मैं प्ली बार्गेन ले लेता हूं और मैंने चोरी किया। लेकिन जो दूसरा इनका साथी है, दूसरा एप्पल का जो इंजीनियर है जिग होंग चेन, वो कह रहा है जी कि मैं अभी भी, उसने माना नहीं है, वो कहता है मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं हूं। अब एप्पल वालों को जो है बड़ा इधर स्यापा पड़ा है कि क्या इन्होंने ये सारा कुछ डाउनलोड करके ये प्लान ऑलरेडी उस चाइनीज कंपनी को चाइना में भेज दिया है, या ये जब खुद जा रहे थे तो तब खुद लेके जाते। क्योंकि अब अगर इन दोनों लड़कों को पकड़ भी लिया है और सजा भी इनको हो जाती है तो फायदा क्या है, टेक्नोलॉजी तो हमारी चाइना के पास चली गई, उस स्टार्टअप कंपनी के पास चली गई। तो कभी भी जब ये छूटेंगे ऐसे फ्रॉड में, क्योंकि फ्रॉड के लिए तो 14 साल कैद नहीं होती ना, कुछ ईयर्स होती है, 2-3-4 साल होती है, तो अगर इनको छोड़ेंगे तो ये उनको जाके ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी तो चली गई। तो मेन एप्पल के लिए जो है ये डायलेमा अब ये है। बहरहाल उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन अब दे आर नॉट श्योर कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। हाँ, तो ये
मोस्ट प्रोबब्ली दे हैव ऑलरेडी सेंट इट।
यस, तो ये जो है ना सारे स्यापे टेक्नोलॉजी के हैं, मजे हैं जी। टेक्नोलॉजी जो है ना बड़ी जल्दी फास्ट ट्रेवल करती है।
Exactly.
हैं जी, तो ये है। अच्छा जनाब, वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रिपोर्ट आई है, और ये एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पे अब एशकन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। बहरहाल जी, हम आपको रिपोर्ट शो कर देते हैं और फिर आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड हैं वो अगर लेना चाहते हैं एक्शन तो वो ले सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ट्विटर सिक्योरिटी चीफ पीटर जेटको जो है उसने आज जनाब इल्जामात लगाए हैं, एक 84 पेज कंप्लेंट दी है यूएस के अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड यूएस सेनेट ऑफ सिलेक्ट कमेटी जो है उसको। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो ट्विटर के ऊपर इंडिया के अंदर जो कुछ चल रहा था, इसमें जो मोदी जी की बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ट्विटर को कह रहे थे कि हमारे गवर्नमेंट के एजेंट्स रखो तुम ट्विटर में, ताकि हमको पता चले कि ट्विटर पे क्या कार्रवाई चल रही है। और जाहिर है कि इसके अंदर उन्होंने ये थ्रेट्स शो करने की कोशिश की हैं, विच क्योंकि इसने रिपोर्ट प्रिपेयर ही की है अंडर पेनिट्रेशन बाय फॉरेन इंटेलिजेंस एंड थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी के अंडर, ये सारी इसने रिपोर्ट जो अपनी 84 पेज की है, और एक और सेक्शन उसमें लिखा है स्क्वीजिंग लोकल स्टाफ, उसके अंडर इसने ये सारी रिपोर्ट प्रिपेयर की और उसने कहा जी कि ट्विटर की जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसके आइडियल्स के ये अगेंस्ट हैं, बिकॉज दे केव्ड इन, ट्विटर इंडिया केव्ड इन टू गवर्नमेंट प्रेशर इन इंडिया, और उसने कुछ लोगों को रखा जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये इसने ट्विटर की जो है ये लेवरेज जो है उसको हार्म किया होगा और कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने जो है वो एनक्रोच किया होगा। तो ये जो हमारे आर्किटेक्चरल फ्लॉज हैं ट्विटर के अंदर उसका फायदा इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया होगा, तो इसके लिए जो है इनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बड़ा सक्सेसफुली जो है इनको जो जोर दिया था तो उसमें हायरिंग करवाई थी, और ये ट्विटर जो है उसकी एक पॉलिसी है कि वो कभी भी कंप्लाई नहीं करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट के जो प्रेशर्स होते हैं, फिर भी इन्होंने कंप्लाई किया और उन लोगों को रखा विद दैट वर क्लोजर टू द बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन्होंने जो है ये इन लोगों को किया। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है उनकी बहुत सारी ट्वीट्स को या तो तोड़ा मरोड़ा गया होगा या उनको पकड़ा गया होगा, उनको सजाएं मिली होंगी,
कुछ हुआ है,
कुछ तो हुआ है मामला। तो क्योंकि वो जो क्रैकडाउन हुए थे पिछले दिनों में कुछ 6-7 महीने पहले ट्विटर इंडिया के ऊपर, उसके जो सीईओ को भी सैक वहां पे किया था और बड़ी उसको कहा था शट डाउन करो, तो ये जनाब आज बड़ी एक्सप्लोसिव रिपोर्ट जो है इसने आज बात की है वाशिंगटन पोस्ट के साथ और ये सारी चीजें सामने लेकर आया। तो ही इज बींग कॉल्ड द एक्स ट्विटर विसल ब्लोअर।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दा दा भी चलाउने हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
यूके स्विट्जरलैंड अते इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दिया वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा। कैनेडा विच खालिस्तान दिया वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा। ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दिया वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नू गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्युनिटी सेंटर विच सवेरे 9 बजे तो लैके शाम दे 5 बजे तक पैणगियां। होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 या 437-423-2666।
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग की जानिब से पेश खिदमत है फंटास्टिक फैमिली फन फेस्टिवल, एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में और साथ ला रहा है तरह तरह के चटखारेदार खाने, बच्चों के खेल, झूले, मुकाबले, लाइव शोज, ओपन एयर बाजार, शायकीने क्रिकेट के लिए अजीम शान क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ। जबरदस्त तफरी और दाखिला बिल्कुल मुफ्त ऑन August 26th, 27th and 28th at CAA Center ब्रैम्पटन। मजीद मालूमात और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें fantasticfest.com।
द मोस्ट ग्लोरियस, द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट स्टार स्टडेड इवनिंग इज रिटर्निंग फॉर इट्स 8th एडिशन। हम अवार्ड्स वंस अगेन इन कनाडा ऑन 24 सितंबर 2022, फर्स्ट ओंटारियो सेंटर। To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to hamawards.ca.
Ji.
अच्छा जी, आपको बताइए, हम ये भी आपको बताते रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जो हैं ये बैठे हुए थे फार्मर्स जो बैठे हुए थे, तो अभी 8 महीने पहले ही ये सारा मामला रफा दफा हुआ था और बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा था हिंदुस्तान के अंदर कि भाई हम आपकी सारी डिमांड्स मांग रहे हैं, आप चले जाओ वापस। तो उन्होंने कहा था जी अच्छा ठीक है, नाउ दे आर बैक, नाउ द फार्मर्स आर बैक अगेन ऑन दिल्ली बॉर्डर। उसकी वजह यह है कि ये कह रहे हैं कि हम अपना जो है महापंचायत यहां पे लगाएंगे और ये ऑर्गेनाइज किया है संयुक्ता किसान मोर्चा वालों ने, जंतर मंतर पे ये बैठे हैं और आज फिर से जितनी भी बड़ी बड़ी जो भी इनकी जो आर्टरीज थी यानी कि जो रोड आर्टरीज थी वो सारी ब्लॉक थी, लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ, लंबे लंबे क्यूज देखेंगे व्हीकल्स के गाजीपुर सिंगू बॉर्डर्स के ऊपर और दिल्ली के सारे एंट्रेंस के ऊपर। इनकी अब डिमांड है कि ना सिर्फ ये कि जो हमारी आपने बातें से कही थी 8 महीने गुजर गए हैं, ना सिर्फ आपने वो मानी है बल्कि जो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा है उसको अब आप पकड़ें, क्योंकि जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो फार्मर्स का मैसेकर हुआ था उसके अंदर वो और उसका बेटा शामिल हैं, तो इसको भी आप पकड़ें। अब इसके ऊपर इन्होंने एक 6 पॉइंट डिमांड फिर से का मेमो पूरा लिख के, जो नई इंडिया की प्रेसिडेंट आई हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको और मोदी जी को फिर से लिखा है और उनका कहा है जी कि ना तो गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड्स मांगी हैं और ना ही जो है अजय मिश्रा यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनको सजा दी गई है। हालांकि यूनियन मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हमने इसका जो बेटा है अजय मिश्रा को उसको हमने पकड़ा, क्योंकि उसने गाड़ी चढ़ाई थी फार्मर्स के ऊपर, तो उसको हमने पकड़ा था, फिर वो छोड़ दिया था। अब वो कहते हैं जी कि नहीं, वो बेटा जेटा छोड़ें, मिनिस्टर साहब को पकड़ें और हमारी डिमांड्स जो है, जो आपने वादे किए थे 8 महीने पहले और हमें कहा था घर जाओ हम आपके बात मानेंगे, आप वो भी मानो, अगर नहीं मानोगे तो फिर से हम इधर बैठेंगे। तो ये अब जो है फिर से वहां पे एक और मोर्चा ये फिर से खुलने वाला है। ठीक है जी, एनडीटीवी की आज एक रिपोर्ट है जी, और कल हमने आपको बताया था कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था जी कि ये जो सारा मेरे ऊपर सीबीआई वाले रेड्स कर रहे हैं और मेरे पे झूठे जो केसेस लगा रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि तुम हमारे साथ आके ज्वाइन कर लो तो हम तुम्हारे ऊपर केसेस जो है ये सारे खत्म कर देंगे, आज जनाब नए कटे खुल गए हैं। अकॉर्डिंग टू टूडेज एनडीटीवी की रिपोर्ट जो है, आज बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के जो के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है जी कि हमें बीजेपी वालों ने अप्रोच किया है और उन्होंने हमें कहा है कि हम तुम्हें 5-5 करोड़ रुपए देंगे हर बंदे को, तो तुम आम आदमी पार्टी को छोड़ के जो है हमारे पास आ जाओ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने कहा था जी कि ये मेरे ऊपर जो स्कैम की पॉलिसीज लगा रहे हैं, यानी स्कैम्स के जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये झूठे हैं और उसकी वजह से अब ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं ताकि हम आम आदमी पार्टी को छोड़ें, लेकिन आम आदमी पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे, जो कल का इनका बयान था। आज जो आपके दूसरे एमएनएज हैं उन्होंने भी कहा है जी कि ये हमें बीजेपी वाले ऑपरेशन लोटस जो है उससे एलोर कर रहे हैं। अब ऑपरेशन लोटस क्या है? ऑपरेशन लोटस, लोटस तो वैसे बीजेपी का साइन भी है, वो लोटस का फ्लावर जो है। ऑपरेशन लोटस ये है कि जब भी वो कहते हैं जी आम आदमी पार्टी वाले, उनके जो लीडर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने आज अनाउंस किया है और एक्सप्लेन किया है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन लोटस ये होता है कि जिस वक्त बीजेपी को लगता है कि दूसरी पार्टी जो है वो जीतने लगी है तो उस पार्टी के एमएलएज को ल्योर करने के लिए ये कहते हैं जी आ जाओ हमें बीजेपी को ज्वाइन करो, हम तुम्हें इतने इतने पैसे देंगे और इसकी गवर्नमेंट को गिरा दो। तो ये नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इतने भी यानी कि गिरे हुए नहीं है कि वो गिर जाएंगे 5 करोड़ रुपए के लिए, तो ये आप हरकतें जो है ना करें। अच्छा, अब इसमें वो कहते हैं जी असल में ये जो है जो अरविंद केजरीवाल है उसको सबक सिखाना चाहते हैं और उसको ये सबक सिखा नहीं सकेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो बीजेपी के लीडर हैं प्रवीश वर्मा, वो कहते हैं जी ये आम आदमी पार्टी ने सारा ड्रामा खुद क्रिएट किया है अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए और बीजेपी को जो है का नाम खराब करने के लिए। कोई इनको 5-5 करोड़ इनके एमएलए को नहीं ऑफर की गई और ना ही इनको कहा गया है। अच्छा भाई, 1, 2, 3, 4 आदमी तो मतलब पूरी पार्टी झूठ बोल रही है, सारे आम आदमी पार्टी के जो मेन जो कर्ता धरता है वो सब झूठ बोल रहे हैं, हाउ इज दैट? तो कुछ तो दाल में काला है, है जी। तो बहरहाल जी ये अब दोनों तरफ से एलिगेशन हैं, आम आदमी पार्टी कहती है ये हमें बुला रहे हैं 5-5 करोड़ के लिए और वो जो बीजेपी की पार्टी है वो कह रही है कि नहीं जी हमने तो कोई नहीं बुलाया ये। दिस इज आज जनाब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से एक बड़ा अच्छा दुनिया को काम करने की कोशिश की है, दिखाया है। 3 अपने जो ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के उनको सैक किया है। आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था मार्च 9 को इंडिया ने कहा था कि जी एक्सीडेंटली हमने वो जो ब्रह्मोस मिसल है वो हमसे फायर हो गया था और वो पाकिस्तान के मियां चुन्नू के इलाके में गिरा था, तो हमने उस सिलसिले में क्योंकि जो एसओपीज जो हैं उससे हमारे 3 अफसरों ने डिविएट किया था, उसको फॉलो नहीं किया था और ब्रह्मोस जो था वो जाके पाकिस्तान में गिरा था, उसकी वजह से हमने उनको जो है 3 लोगों को सैक किया है। अगर आपको याद होए हमने आपको ब्रह्मोस की पूरी एक जो जिस तरह से इसको बनाया गया है वो हमने सारी एक्सप्लेन आपको की थी। ब्रह्मोस जो है 500 किलोमीटर्स सिर्फ इस्लामाबाद से दूर जाके, जैसे कि मैंने भी आपको बताया मियां चुन्नू में गिरा था, और इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है, विच मीन्स दैट ब्रह्मोस कैन एक्चुअली हिट इस्लामाबाद विद डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स, क्योंकि ये न्यूक्लियर हेड जो गिरा था पाकिस्तान में वो तो कैरी नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को हिट करना चाहें तो न्यूक्लियर जो वॉर हेड के साथ भी, क्योंकि ये न्यूक्लियर केपेबल है कर सकते हैं। ये क्रूज मिसल है और इसके तीन जो लेवल्स के जो हैं वो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम्स हैं। ये इतना प्रिसीजन से बनाया गया है ये ब्रह्मोस के जिधर जाना चाहता है इसको मनूवर किया जा सकता है, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, हालांकि इसको छोड़ने के बाद वापस तक बुलाया जा सकता है अगर आपने उस टारगेट में आपका दिल अब मान नहीं रहा कि हमने इस टारगेट को मारना है तो भी। तो इतना ये प्रिसीजन है। तो उसमें पाकिस्तान ने उस वक्त जो है फॉरेन ऑफिस ने ये जो इनके चार्डी अफेयर्स थे इंडिया के उसको बुला के बड़ा जो था बुरा मनाया था और कहा था, प्रोटेस्ट किया था कि ये आपने कैसे किया है, क्योंकि ये जब उड़ के आ रहा था तो उस वक्त बहुत सारे तैयारे भी फिजा में थे और पाकिस्तान ने कहा था कि ये फ्लाइट्स को और जो सिविलियन लाइव्स हैं उनको एंडेंजर कर सकता है। आज ही हिंदुस्तान ने कहा है कि हमने एयरफोर्स के तीन अफसरों को जो है वो सैक किया क्योंकि उन्होंने एसओपीज फॉलो नहीं किए। तो भाई साहब ये जो इतना हाई प्रिसीजन क्रूज मिसल है जिसको कि आप किसी भी वक्त मैनूवर कर सकते हैं, तो जब ये गलती से निकल भी गया तो आपने इसको वापस क्यों नहीं बुलाया है जी, क्वेश्चन तो ये है। तो तीन लोगों को अगर आपने बकरा बनाया है कुर्बानी का तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। मेरी तो अभी भी फिलॉसफी ये है कि ये इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की है कि क्या हम पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज इट कैन एक्चुअली हिट। इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर है, तो ये जाके इस्लामाबाद को हिट कर सकता है। तो अब आप खुद सोचें कि अब इसमें क्या है। बहरहाल जी, इसको उन्होंने दुनिया को ये बताया कि जी हमने बड़ी सजा दी है लोगों को। ब्लूमबर्ग की जनाब आज एक रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग ने आज कोट किया है फिच ग्रुप यूनिट क्रेडिट साइट्स वालों को और इसके मुताबिक वो कहते हैं जी कि ये जो गौतम अदानी जो इंडिया के बिलियनेयर हैं और दुनिया के फोर्थ रिचेस्ट आदमी हैं, इनकी जो वेल्थ है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन 137.6 बिलियन US डॉलर्स है। तो जनाब वो इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था 1988 में और ज्यादातर ये एनर्जी यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर करते हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने जो है हाइफा पोर्ट जो इसराइल के अंदर है 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से जुलाई में खरीदी थी। इसके अलावा इन्होंने जो स्विस फर्म हॉटशिम है उसको भी खरीदा है और 10.5 बिलियन यूएस डॉलर में इनमें। लेकिन ये जो फिच ग्रुप की जो आज रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने आज कोट किया है उसमें वो कह रहे हैं कि ये बहुत अग्रेसिवली ये ग्रुप जो है गौतम अदानी का इन्वेस्ट कर रहा है एंड देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ डिफॉल्ट। इनकी बहुत सारी कंपनीज जो हैं क्योंकि वो सब डेट में चल रही हैं तो वो एक डेट ट्रैप में चली जाएंगी और ये डिफॉल्ट कर सकती हैं। तो उन्होंने आज कहा है कि इनको जरा गौतम अदानी जी को थोड़ा सा हाथ खींच के अब चलना पड़ेगा, अगर ये ना चले तो इनको अपने बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो शट डाउन करनी पड़ेंगी आने वाले दिनों में। अच्छा ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब वो अब कतर के दौरे के ऊपर हैं और फिर जाहिर है वो बेगर्स कांट बी चूजर तो भीख मांगने फिर से निकले हुए हैं ये वहां पे कतर में अब गए हुए हैं। लेकिन कतर जाने से पहले इन्होंने जी ट्रेडर्स के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज आज अनाउंस किया है। इन्होंने कहा जी कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन जो है उसका बड़ा बर्डन है लोगों के ऊपर, हम इन्फ्लेशन को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रीवियस गवर्नमेंट की बहुत ही बैड और टेरिबल, इन्होंने वर्ड यूज किया, टेरिबल पॉलिसीज थी उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमें तकलीफ का पता है। इनको मिफ्ता इस्माइल साहब जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ट्रेडर्स के ऊपर फिक्स टैक्स लगाने की जरूरत है ताकि ये जो गैप है ये इसको फिल किया जा सके और शोर अप किए जा सके हमारे रिजर्व। तो उसके लिए आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम कोई भी फिक्स टैक्स जो है ट्रेडर्स के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। तो ये जनाब आज इन्होंने वहां पे जाने से पहले बड़ी वो की, उस दिन उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि हालांकि इससे टैक्स गैप जो है 42 बिलियन रुपीस को टच करेगा लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको दूसरे तरीके से फिल अप करने की कोशिश करेगी। और जनाब मुझे लगता है क्यामत आने वाली है। अच्छा। बिल्कुल क्यामत आने वाली है। आसिफ अली जरदारी साहब पीपीपी के जो हैं करता धरता एडी कह सकते हैं आप उनको, उन्होंने आज बड़ी सीख दी है इमरान खान साहब को। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को सीख दी है। उसने पूछा है जो पाकिस्तान के लोग हैं उनसे जरदारी साहब ने कि क्या इमरान खान इज अबव लॉ, क्योंकि ये स्टेट डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस सब के खिलाफ बातें कर रहा है, तो क्या मुल्क में गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करेगी या नहीं करेगी, जबकि पीपीपी और बाकी की गवर्नमेंट्स जो हैं वो फ्लड इफेक्टिव के लिए काम कर रही हैं। इमरान खान जो है इतना पावर हंग्री है, इतना क्रेजी होता जा रहा है दिन ब दिन कि इसको सिवाय आर्मी को क्रिटिसाइज करने के लिए, सोल्जर्स जो कि टेररिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं उसके खिलाफ बातें करने के लिए और जो है एनार्की मुल्क में फैलाने के अलावा इसको और कोई काम नहीं है। इसके अलावा इसने पुलिस को थ्रेटन किया है, फीमेल मैजिस्ट्रेट को किया है, तो ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल और वेंचफुल एक्शंस में इन्वॉल्व है। तो क्या ये मुझे, मियां नवाज शरीफ को, मेरी बहन को, मरियम को जो है वो सबके खिलाफ बात कर सकता है, तो उसको ये इस चीज की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं? तो आसिफ अली जरदारी साहब, और तो बहुत सारे बयान हैं आपके माशाल्लाह से आर्मी और बाकियों के खिलाफ। एक बयान हम आपको बता देते हैं कि एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जब ये थे प्रेसिडेंट, थे आसिफ अली जरदारी साहब, तो इनसे वहां पे पूछा जर्नलिस्टों ने कि सर ये जो आपने ड्रोन हमले बहुत सारे अमरीका के आपने इजाजत उसकी दे दी है, तो उसमें बहुत सारा जो है वो नुकसान होता है, तो आप ना करें। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हाँ जी, जब ड्रोन हमले होंगे तो कोलैटरल डैमेज तो होगा ही, यानी कि जो आम लोग हैं पाकिस्तान के वो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कोलैटरल डैमेज से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो सर आपका तो अपना खुद का बयान ऐसा है, और मिलिट्री के खिलाफ आपके 10 बयान हैं, हम इंशाल्लाह किसी दिन पूरी रिपोर्ट बना के आपके लिए खास तौर पे पेश करेंगे। बहरहाल जी आज इन्होंने ये कहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है जी उसने शो कॉज नोटिस जो है इमरान खान साहब के लिए जारी किया और उनको कहा है कि 31 अगस्त को आप आके यहां पे हाजिरी दें। 3 मेंबर हाईकोर्ट का जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो बेंच था जिसमें के हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, मियां गुल हसन औरंगजेब, ये सुन रहे थे। एडिशनल जो सेशंस जज हैं जेबा चौधरी, उसके लिए जो इन्होंने बात की थी, उनको कहा था कि तुम जो है कॉन्सिक्वेंसिस के लिए तैयार हो। और बाकी पुलिस के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज गिल को जिस तरह से तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, तो आईजी जो है इस्लामाबाद पुलिस का, डीआईजी, इनको जो है मैं वार्न करता हूं कि तुम्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा, तो सब मत करो उस सिलसिले में। और जस्टिस कियानी जो थे उन्होंने कहा कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर से हम इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर हर कॉमन मैन अगर जस्टिस अपने हाथ में लेना शुरू कर देगा तो स्टेट कैसे चलेगी। तो पायान आजकलों पहले तो उन्होंने याद आया जो हर कोई अपने हाथ में ले रहा था, आज तो अनुसारी वो याद आ गई है। बहरहाल जी इमरान खान साहब को बुलाया गया। पीटीआई के जो लीडर्स हैं जी वो बिल्कुल खुश नहीं है किस तरह से जो मामला चल रहे हैं चौधरी परवेज इलाही के अंदर, उसमें पंजाब के अंदर, और उसके लिए आज जो इनके पीटीआई के लीडर हैं आजम मशवानी, उन्होंने कहा है कि ये जो होम्योपैथिक गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर चल रही है हमको उससे क्विट करना चाहिए, क्योंकि जो है ये अभी इनको अपॉइंट भी हालांकि किया गया था मीडिया कोऑर्डिनेटर फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब। उन्होंने कहा जी कि ना तो पंजाब की गवर्नमेंट जो इमरान खान के खिलाफ अभी जो बातें आई हैं कि इसको अरेस्ट किया जाएगा और इसके लिए समन्स भी जारी किए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल जो है नाकाम हो चुकी है। इनको ज्वाइन किया जी उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि यस बिल्कुल शहबाज गिल साहब को जो टॉर्चर किया गया है और जो कुछ यहां पर हो रहा है कि इमरान खान के लिए भी कहा गया कि उसको अरेस्ट करो, तो पंजाब की गवर्नमेंट और इवन उन्होंने तो केपी की को भी रगड़ दिया कि केपी की गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ नहीं कर रही है। और ये जो है फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिर्फ 25 किलोमीटर ये दूर बैठे हैं तुमसे, पंजाब वालों को कहा कि यानी इस्लामाबाद जो है 25 किलोमीटर दूर है लाहौर से, तो तुम्हारे से 25 किलोमीटर दूर बैठे हैं और ये सारे रोग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो तुम उनको कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमने अपने पुलिस ऑफिशियल्स को कहा है कि पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ जो इन्होंने क्रैक डाउन किया है उसमें इनको जो है पीएमएलएन के लीडर्स को पकड़ो, लेकिन फवाद चौधरी ने कहा जी कि अभी तक हुआ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उनमें से किसी को अरेस्ट तो अभी तक आपने किया नहीं है। तो बहरहाल ये बड़ी मुझे फनी इनका जुमला लगा अजहर मिशवानी साहब का कि ये होम्योपैथिक गवर्नमेंट है पंजाब की तो ऐसे है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है जी उसने जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मियां साकिब निसार साहब, उनको आज कहा है जी, उनकी लाइन हाजिरी की है और उनको कहा है जी कि ये जो डैमर भाषा डैम का जो फंड आपने कायम किया था जिसमें कि आपको फिर इमरान खान साहब ने भी ज्वाइन किया था जुलाई 2018 में, इसके लिए आपने 10 बिलियन रुपीज जो थे वो जमा किए थे, लेकिन उसमें से 13 बिलियन रुपीज तो आपने एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर स्पेंड कर दिया। अच्छा वो किया भी तो ये जो 10 बिलियन रुपीज था ये किया कहां आपने? ये पिटीशन जो है ये लेकर आए हैं पीएमएलएन के जो لیڈر ہیں احسن اقبال صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نثار صاحب سے پوچھے کہ آپ تو چیف جسٹس تھے, آپ کو وہ کام کرنا چاہیے تھا کہ یا کہ آپ کو یہ ڈیم کے لیے پیسے جمع کرنے چاہیے تھے. فار دا فرسٹ ٹائم آئی اگری ود احسن اقبال صاحب. تو اس کی آج جو پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئر کر رہے تھے نور عالم خان کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ ان سے پوچھا جائے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے دوسرے لیڈر ایم این اے برجیز طاہر نے بھی ایسے کوشچن کیے. انہوں نے کہا جی ہم کوئی ججز کو تھریٹن نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فنڈز جو انہوں نے جمع کیے تھے وہ کدھر گئے, کہ اس میں ڈیم جو ہے کیوں نہیں بنا. سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی کہا جی کہ اس کے اوپر یہ جو فنڈز ہیں ان کی انکوائری تو ایک بٹھانی اس کے اوپر بنتی ہے, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ انکوائری بٹھانی بنتی ہے ضرور, کیونکہ میاں ثاقب نثار صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, آپ جو ہے آپ کو اپنے فیلڈ میں چینجز لانے کی ضرورت تھی, نہ تو جو ہے 20-25 سال سے جو کیسز چل رہے ہیں نہ وہ ختم ہوئے ہیں, نہ جو ہے وہ کوئی لوگوں کو زیادہ انصاف ملے ہیں, نہ آپ نے کوئی جوڈیشری میں ریفارمز کیے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹلس کے چکر لگاتے اور آپ جا کے ڈیم فنڈ کرتے, آپ اپنا جو ادارہ تھا اس کو اگر آپ صحیح کرتے تو زیادہ اچھی بات تھی. بہرحال آپ نے کیا نہیں تو بالکل پوچھنا تو بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, آج جناب فرحان اختر صاحب اور رشتیش سڈوانی جو کہ ان کے بڑے دوست ہیں, ان کی یہ جو ایکسل انٹرٹینمنٹ ہے اس کے اوپر بڑا جی سوال اٹھایا گیا ہے, کیونکہ جو مزدور یونین ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 300 ڈیلی ویجرز جو ہیں جب آپ اپنی ویب سیریز بنا رہے تھے مرزا پور 3, ان کو آپ نے پیسے نہیں دیے تھے, اور یہ پیسے تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہیں. یہ ایکسل نے تمام جو انٹرٹینمنٹ ہے اس نے تمام یہ ایکوزیشن جو ہیں ان کو ڈینائی کیا ہے. حالانکہ میڈیا کے کچھ اداروں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایک لیٹر کہیں سے ملا ہے جس میں کہ ایکسل انٹرٹینمنٹ نے کہا ہے اس کسان اس کو مزدور یونین کو کہ ہم 48 آورز میں تمہارا یہ سارا مسئلہ رفع دفع کریں گے. ایکسل انٹرٹینمنٹ کا کہنا ہے جی نہ تو ہم نے کوئی ایسا خط بھیجا ہے, نہ ای میل بھیجی ہے, نہ ہی کوئی فون کالز کیے ہیں, کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, ہمارے سامنے تو پہلی بار آیا ہے. اس وقت بھی ہم 7 سے 8 پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں, پچھلے 22 سال سے اس بزنس میں ہیں, ہم نے ہمیشہ پیمنٹ کمپلائنس پالیسی کا خیال کیا ہے, کبھی ایک روپیہ بھی کسی کا رکھا نہیں ہے, اور ہم پیسے ڈائریکٹلی ڈیلی ویجرز کو دیتے ہیں, یونین کے بندوں کو نہیں دیتے ہیں. پھر بھی اپنے اینڈ پہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے, لیکن ہماری جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایسا کبھی بھی کوئی مسئلہ پچھلے 22 سال میں کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. تو اب یہ پتا چلے گا جی یہ کیا ہے. ہندوستان کے اندر جناب آج ایک اب جو ہے کچھ دنوں سے ایک نیا جو ہے وہ ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے, اینڈ دیٹ از بائیکاٹ بالی ووڈ فلمز. اس کے انڈر جو ہے اسی لیے جو بڑی بڑی پچھلے دنوں میں فلمز آئی ہیں جیسے کہ اس کی عامر خان کی لال سنگھ چڈا, رتک روشن کی جو آنے والی فلم ہے وکرم وڈا, اور اکشے کمار کی جو فلم آئی تھی رکشا بندھن, شاہ رخ خان کی آنے والی فلم پٹھان, عالیہ بھٹ کی فلم ڈارلنگز, رنویر کپور اور عالیہ کی آنے والی فلم برہماستر, ان سب کو جو ہے کہا جا رہا ہے ٹویٹر پہ کہ ان سب کو جو ہے بائیکاٹ کیا جائے, کیونکہ یہ جو ہیں ویسے بھی رنویر کی تو کتنی بھی فلمیں جو آئیں, کیونکہ اس نے عامر کے ساتھ پی کے میں کام کیا تھا جس نے کہ ہندو سینٹیمنٹس کو کیا تھا جو ہے وہ ہرٹ کیا تھا, اور شاہ رخ خان اور عامر جو ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بڑا انٹالرنٹ سوسائٹی ہے, تو اس لیے ان سب کو آپ بائیکاٹ کریں. تو یہ ایک نیا بائیکاٹ جو ہے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, اور ہر کوئی ہر کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کی فلمیں نہ دیکھو ان کی نام. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے انوراگ کشیپ جو ہیں کہ بہت بڑے جو انڈیا کے ڈائریکٹر ہیں, ان کا ایک اور جو بھی فلم تھوڑے دن پہلے آئی ہے دوبارہ جس میں تاپسی پنو تھی, تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بڑا ہی زبردست ٹرینڈ جو آف بائیکاٹ کلچر جو چل رہا ہے دنیا ملک کے ہمارے کے اندر, تو میں کہتا ہوں کہ پلیز میری بھی فلم جو ہے دوبارہ اس کو بھی اس میں شامل کرو, بیکاز اٹ ہیز ریئلی بیکم اے جوک, اور اس میں جب لوگ جوک کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں, تو میں بھی اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرنا چاہتا ہوں, تو اس لیے پلیز میری فلم جو ہے یہ دوبارہ اس کو بھی بائیکاٹ کرو تم لوگ. تو اس کے اوپر جو ہے لوگوں کے بڑے جو ہیں وہ ریزرویشنز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بائیکاٹ کلچر ہے, بے شک آپ کسی کو نہیں پسند کرتے, آپ خود نہ فلم دیکھیں, لیکن آپ یہ ٹرینڈ نہ چلائیں, دوسروں کو نہ کہیں کہ بھئی تم نہ دیکھو, کیونکہ اس سے جو جنہوں نے بہت کام کیا ہوتا ہے ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اچھا جی, تمہارا جو ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہے, کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا بہت بڑے انڈیا کے جو سنگر ہیں کے کے, ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ان کی بیٹی ہیں, انہوں نے آج جو ہے اپنے فادر کو کے کے کو یاد کیا آن دا فرسٹ برتھ ڈے سنس ہز ڈیتھ اباؤٹ ارلیئر دس ایئر. تو اس کے لیے انہوں نے بڑی پیاری ایک تصویر جو ہے وہ کی ہے, اور اس میں وہ لوگ جو ہیں برتھ ڈے کی پکچر تھی. اب اس پکچر میں جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیک نہیں نظر آ رہا, لیکن وہ کیک بھی تھا ٹیبل پہ, اس میں ان کی وائف بھی کھڑی ہوئی تھی جیوتی کرشنا. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہیپی برتھ ڈے ڈیڈ, آئی ایم گونا مس یو 500 ٹائمز ٹوڈے, اینڈ ڈونٹ وری وی ول ناٹ لیٹ مام بی سیڈ, اور वी आर गोइंग टू गिव हर अ हेडेक सो दैट शी गेट्स एंग्री और इस तरह की बातें.
वेरी
टची, वेरी टची, यस, बट वी मिस यू एवरी डे. तो इस तरह की बड़ी उन्होंने प्यारी बातें अपने फादर के को याद करते हुए कही हैं. एंड जनाब वसीम अकरम साहब, बिफोर द बिग डे, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है August 28 को, एशिया कप 2022 का, उससे पहले वसीम अकरम साहब को इससे पूछा गया कि आपके फेवरेट इंडियन स्टार्स जो हैं वो कौन से हैं. उन्होंने कहा कि नीडलेस टू से केएल राहुल और कोहली और रोहित शर्मा तो मेरे हैं ही हैं, लेकिन जो सबसे डेंजरस जो बैट्समैन है जो कि पाकिस्तान को बड़ा हेडेक दे सकता है वो सूर्य कुमार यादव है. और वो कहते हैं जी कि इसने अपना डेब्यू किया था March 2021 में और वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स है ये, और सूर्य कुमार यादव के साथ मैंने काम किया था ये KKR में, ये जो शाहरुख खान की जो है कोलकाता नाइट राइडर्स उसमें, और वो कहते थे ऐसी ऐसी वो शॉट्स खेलता था कि मैं स्पीचलेस हो सकता था. तो पाकिस्तान को इसको सूर्य कुमार यादव को लाइट नहीं लेना चाहिए बिकॉज ही कैन बी अ वेरी वेरी डेडली बैट्समैन. तो जनाब पाकिस्तान वालों सुन रहे हो तो सुनो फिर प्लीज. और जनाब सिकंदर बख्त साहब ने और भी बहुत सारे जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा जी कि आप लोग प्लेयर्स को पाकिस्तान में सही तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं और आप उनको बर्न आउट कर रहे हैं. और उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि जैसे अब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात आई है कि वो ये जो एशिया कप 2022 है वो नहीं खेल सकेगा और इंग्लैंड का टूर भी नहीं कर सकेगा जो उसको श्रीलंका के मैचेस के बीच में नी इंजरी आई है, तो अब PCB को चाहिए कि वो अफरीदी को और बाबर को मैनेज करे प्रॉपरली. शाहीन शाह अफरीदी नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है तो PCB उसको जरा थोड़ा बहुत ज्यादा एटमोस्फेयर से उसके साथ डील करे और बाबर आजम को भी अब थोड़ा रेस्ट दे. एक सीरीज के अंदर उसने 222 रन बनाए हैं तो ही शुड बी सिटिंग विद मैनेजमेंट एंड ही शुड बी सिटिंग आउट फॉर सम टाइम. तो इतना भी इनको ना खिलाओ कि ये बर्न आउट हो जाएंगे लड़के.
नहीं मगर वो कोई रोजाना तो गिनी जा रहे ना
9 to 5. पूछो
एक मैच खेलते
हम कितना बर्न आउट हुए, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा.
एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 मैच खेल लिए, उसके बाद फिर कितने दिनों का उनके पास टाइम होता है?
10 दिन छुट्टी.
10 दिन क्या, एक महीना छुट्टी होती है. तो फिर आई मीन दे आर यंग गाइस एंड दे आर गेटिंग पेड वेल सो एंड यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान.
नहीं नहीं, उनका कहना है कि भाई रुस के बैठ जाओ, बोलो मैं नहीं खेलना भाई. मैं नहीं खेलना, बस मैं बाहर बैठ रही हूं.
दूजे नु ले आओ
जरा तीर मार सकता है. हां जी क्योंकि आपने तो बहुत ही 50,000 लड़के तैयार किए हुए हैं ना.
हाँ जी,
आपके पीछे तो इतना बंदा है कि बस आपने अगर बाबर आजम ना रहा तो और पता नहीं कोई जो है शाजिया मलिक आ जाएगी
खेलने आ जाएगी, के लिए, आ जाएगी
खेलने के लिए.
फिर,
हाँ।
फिर देखो
फिर देखो कैसे टाइगर जिंदा होता है. हाँ। जी तो जनाब तो बहरहाल जी ये बड़े मशवरे दिए गए हैं PCB को, तो अब देखें इसके ऊपर PCB जो है क्या करती है. एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज टुडे इज अबाउट सैयद हैदर हुसैन, और इनको इलेक्ट किया गया, न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के. और आपको अगर पता हो इनके बारे में कि इन्होंने पाकिस्तान जूनियर जो है और सीनियर टीम्स को रिप्रेजेंट किया था 1996 से 2002 में, ये कहते हैं जी कि मैं फिर से जो है ये हॉकी को, पाकिस्तान हॉकी को ट्रैक पे लाऊंगा, मैं इंटर स्कूल जो मैचेस हैं उनको रिवाइव करूंगा, इंटर क्लब मैचेस और एक्टिविटीज को करूंगा, जूनियर्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करूंगा, पाकिस्तान हॉकी लीग जैसे कि ये है पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो है PSL वगैरह है उसकी तरह का
कायद-ए-आज़म
ट्रॉफी वगैरह उन सबको मैं रिवाइव करूंगा. और सबसे बड़ी बात यह है जो कि गेम की फाइनेंशियल हेल्थ है उसको मैं ठीक करूंगा. वो कहते हैं जी मैं 3-tier सिस्टम लाऊंगा Under 8, Under 12, Under 16, Under 18, Under 21 के अंदर, और सीनियर्स जो हैं उनके साथ.
गुड आइडिया,
हाँ
वेरी गुड,
वेरी गुड आइडिया. तो उनके साथ साथ जो है मैं और भी जो है तकरीबन 360 प्लेयर्स का एक पूल मैं तैयार करना चाहता हूं. इस वक्त सिर्फ 20 प्लेयर हैं और 20 और उनको वो 30 थे तो वो श्रिंक होकर वो कम होते जा रहे हैं, और उनको पता होता है जब वो कैंप में खेलने आते हैं कि मोर और लेस इन्हीं में से उनको चूज करना है और यही जो है हॉकी खेलेंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है. और अब मैं इस गेम के अंदर स्पॉन्सरशिप्स लेकर आऊंगा ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले बोथ मेन एंड वुमेन हॉकी दोनों के अंदर. और जो वुमेन्स हॉकी है उसके अंदर भी मैं 2 teams Under 18 और Under 25 जो है वो करूंगा, और ओपन ट्रायल्स मैं जल्दी शुरू करूंगा ताकि पाकिस्तान हॉकी जो है फिर से अपने ट्रैक पे आए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कभी टीम होती थी. बैक टू बैक उसने जो है 2 Olympics जीते थे.
अब ये बातें तो बड़ी अच्छी है मगर इसको इंप्लीमेंट करना है. जॉब ऑफ द गवर्नमेंट इज टू हेल्प दिस गाय.
तो वो कहते हैं जी कि ये मैं फिर से रिवाइव करूंगा और पाकिस्तान की ग्लोरी जो है हॉकी की वो वापस आनी चाहिए, विच इज राइट.
There you go. Yes. At least किसी को तो, जैसे हमारे पास आए थे ना जहांगीर खान, उन जैसे लोगों को ये जो हॉकी के प्लेयर्स हैं या क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, ये आपको बाहर से हायर करने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन मसला तो ये है ना, उन मस्कीनों को भी फैसिलिटी याद नहीं देते ना माजिद भाई। अब फैसिलिटी याद नहीं देंगे तो वो बेचारे कैसे खिलाएंगे आप? उसके ऊपर तो उसका तो नेचुरल टैलेंट था।
इंग्लिश तो वो समझते ही नहीं, तो इसीलिए तो वो अमल नहीं कर रहा।
हाँ, लेकिन उसके अंदर तो नेचुरल टैलेंट था तो वो तो निकल गया, आगे ऐसे निकल गया बाहर। किसी के अंदर तो नेचुरल टैलेंट नहीं होता ना, वो तो फिर ग्रूम करना पड़ता है।
ग्रूम करना पड़ता
है, तो ग्रूम करने के लिए फैसिलिटी याद चाहिए ना।
बस ये करे ना, देना ठीक हो गया।
ठीक है जी, ये दीजिए हमारी आज की खरबे।
ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये थी आज की खबरें।
जी 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 जी, सानू देख माजद भाई नू 9 to 5 9 to 5 ना, हम भी बर्न आउट हो गए हैं माजद भाई।
हाँ जी, बर्न आउट,
हमको भी नोवा स्कोशिया जाना है अब। चलो चलिए,
हमने भी देना है यार। हमको भी एक दस दिन की ऑफ दे, फिर
नोवा स्कोशिया हम जाएंगे,
एक हफ्ता काम करें,
फिर दस दिन की छुट्टी, फिर हफ्ता काम, फिर दस दिन,
फिर छुट्टी, उसके बाद एकदम छुट्टी,
उसके बाद दरख्त से प्रोग्राम।
बाकी खबरें कल, अगर 10 दिन की छुट्टी पे ना गए तो बाकी खबरें कल 5:30 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।
लेकिन आसरा सा दे दें लोगों को कि देखें जी, आसरा रहना चाहिए आपको। अगर हम दरख्त में भी बैठे होंगे ना, मैंने आपको तरीका बताया था मजद भाई, इस तरह एंटना लेके बैठे होंगे, खबरें आती रहेंगी आपको,
देख लो।
हाँ जी,
वो नहीं रुकेंगी,
वो नहीं रुकेंगी।
मैं की करा मज्जी की
चलो जी, नोवा स्कोशिया जाके डाने।
मैं और शास्त्री जी जा रहे हैं नोवा स्कोशिया।
यस,
अगर आपने खबरें पढ़नी सुननी है तो नोवा स्कोशिया का 770 लगाइएगा।
यस,
वहां से आपको मिल जाएगी।
हर बार बजनू देंगे पढ़ो बैठ के, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं आते।
मैं की करा।
हाँ जी,
एनीवे चले साहब, बहुत होगी बातें तो अब सलीम जावेद, अभी थोड़ी देर पहले आपने सलीम जावेद को हमारे स्टूडियो में देखा और सुना उनको, तो अब जो है सलीम जावेद की आवाज़ में एक गीत सुनाता हूँ, क्योंकि वो आ रहे हैं, आ गए हैं यहाँ पर, मगर परफॉर्म करेंगे कमिंग सैटरडे को, नॉट कमिंग सैटरडे, उसके बाद वाले सैटरडे को, कब है? हाँ, उसके बाद वाले कमिंग सैटरडे को, ये ट्यूसडे ना।
हाँ जी,
वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे को इधर आएंगे, तो फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को इधर आएंगे वो, तो सैटरडे को
जी
ए जो स्टेडियम है ना ब्रैम्पटन में, कैनेडी रोड पे, वहां पर होंगे। बाकी सारी तस्वीर तफसीलात हम दे रहे हैं
आपको। मजा तो क्या हो गया आपको? आपको छुट्टी की जरूरत है, आप जाओ नोवा स्कोशिया।
शी इज राइट, फर्स्ट टाइम CAA. Anyway, चले साहब, आप गीत सुनाइए, गीत के फौरी बाद पड़ा में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है। थैंक यू सो मच,
I'll see you inshallah tomorrow.
इंशाल्लाह।
जीते देखा है तुमको सनम, चैन रहते हैं उस दिल से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम
करूं के मुसव्विर नहीं है, बदनसीबी के शायर नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम। बदलते हैं हम शम्मा की मानिंद जलते हैं हम, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें पता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है, तुम हो बहारों में तुम, इस दिल में तुम हो नजारों में तुम, कैसे बताएं ये तुमको सनम। तुम मेरे हो जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं इस दिल से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो,
निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577। सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट्स या फिर सीट बेल्ट्स,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट व्हाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112 गाड़ी घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522
Grill in the Hut, Mrs. Saga में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। Grill in the Hut।
خوبصورت دانت، با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو، آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن، فلنگز، کراؤنز، بریجز، کلیننگ، ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس، فری کنسلٹیشن، دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا، 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، 299-7466.
کہنا چاہتی ہوں میں عارفہ مظفر، آپ کے ساتھ ایک دو ملاقاتیں آپ سے کروانی ہیں. ایک تو آپ کو بتائی ہے کہ ایک نیوز، میں نے ہمیشہ کہا کہ انفارچونیٹلی ہم اپنے مضموم مقاصد کے لیے مختلف، آج میں بلکہ جس شخص کا ذکر کر رہی تھی، مجھے ان کی ای میل جب ملی تو میں نے اس کو جواب بھی دیا کہ سوشل میڈیا پہ فیبریکیشن اتنی کامن ہے اور حقیقت کی خبروں کے اوپر سے بھی یقین جو ہے وہ بعض اوقات مٹ جایا کرتا ہوتا ہے. شاید میں نے شیئر کیا تھا کہ اس شخص نے مجھے صبح کال کیا، ان کا ہے غفرانجف خان، خان صاحب ہی میں ان کو کہتی ہوں، ینگ بوائے. انہوں نے جو مجھے میسج کیا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انہوں نے کہا تھا، آئی نارملی انجوائے یور شو اینڈ شو اپریشیٹ یور ہارڈ ورک، بٹ یسٹرڈے یو انوائٹیڈ بیرسٹر ظفر اللہ خان ہو اسٹارٹیڈ ود ہز اون ورچوز، ایٹ وچ پوائنٹ آئی اسٹاپڈ واچنگ. آئی ہیپن ٹو نو دیٹ ہی از اے ڈس آنےسٹ پرسن، یو مے لائک ٹو سرچ فار ہز پریس کانفرنس ویئر ہی ڈیفینڈ فرنٹ گیٹ آن پی ایم ایل این آن بہاف. بالکل صاحب، وہ ان کی پارٹی ممبر ہے. میں نے ان کو آج جو جواب دیا، میرا جواب یہ تھا کہ السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو فار دا ای میل اینڈ یور کنسرن. مائی گریٹسٹ وری از پولرائزیشن آف پاکستان، فیملیز اینڈ دا براڈر ریلیشنز آر بیڈلی ڈیوائڈیڈ. پالیٹیشنز مے ہیو بینیفٹ، بٹ واٹ از ان اٹ فار دا پیپل آف پاکستان؟ وی کلیم ڈیموکریسی، وی وانٹ ڈیموکریسی، وی مسٹ لسن ٹو دا ادرز اوپینین، اٹ از کمیونیکیشن، ایوری ون ہیز رائٹ، وی کین ڈس اگری ود ریسپیکٹ، وی نیڈ آل پارٹیز اینڈ ability to convince each other by using bad language which is quite common these days, calling names, using bad words for the women, that is not the solution. Our home is an example of the state on the smaller level, which I have said many times on the radio. But coordination is a pillar of the success. Got to listen others' objective. Our listeners have their own leaders we serve. اور وہی شعر ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. وی گاٹ ٹو ورک ٹوگیدر، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کاملی، وی گاٹ ٹو لسن ایوری ون اینڈ اگری ٹو ڈس اگری، وی آر ہیومن بینگس. عارفہ مظفر، انہوں نے آج مجھے جواب دیا، تھینک یو مسز مظفر فار یور پرومپٹ اینڈ ڈیٹیلڈ ریسپانس، آئی تھنک آئی انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ یور پوائنٹ آف ویو. دا نیڈ آف اینڈنگ پولرائزیشن از اپون اس، بٹ سم ٹائمز ون ہیز ٹو فائٹ فائر ود دا فائر. کین اینی ون سیٹ ڈاؤن ود دا پیپل ہو آرڈر اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ٹارچر آن گل؟ آئی اگری سر، مگر یہ اگر آپ آنےسٹلی دیکھیں تو پچھلی گورنمنٹ نے اتنا نہیں کیا تھا. میں لاؤڈلی آپ کو کہتی ہوں کہ آئی ایم کنوینسڈ بائی ہز، آپ اس کو ڈس آنےسٹ کہہ لیں گے. میں قرآن میں آئی بلیو سو 17 پارہ کے بیچ میں ہے، جب جنگ بدر تھی تو ایک صحابی تھے جنہوں نے مکہ معظمہ کی طرف نا پیغام پہنچا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کہا ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا تھا. کسی کے دل کا حال میں نہیں جانتی، کسی کے دل کا حال آپ نہیں جانتے، میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے، مگر اور جوانی کی غلطیاں ایمانداری سے بتائیں کون نہیں کرتا؟ آپ نے بھی کی ہوں گی، ہر کوئی کرتا، ہر انسان کرتا. یہ غلطی معمولی بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطی بڑی بھی ہو سکتی ہے، مذاق چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مذاق بڑا بھی ہو سکتا ہے. مگر جو آپ نے یہ لفظ کہا نا کہ شہباز گل، دیکھیے صاحب، اس گورنمنٹ نے بھی پچھلے دنوں میں زیادہ، عمران خان از اے ویری آنےسٹ مین، اس چاہتا تو وہ اپنی بیوی سے شیئر لے سکتا تھا، وہ چاہے تو وہ اس کے پاس لوگوں سے پیسہ لے سکتا ہے، مگر اس نے یہ گھر بھی شوکت خانم کو ڈونیٹ کیا ہوا جائے گا. اور آپ امیجن کریں کتنے لوگوں کے، یہ تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ہر بیماری سے بچا کے رکھا ہوا. ہم تو مردہ دفنانے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ میں نے تو کبھی قبر میں جانا ہی نہیں ہے، بس اسی مردے کو دفنایا ہوں، جنازہ پڑا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. یس، یہ اس کی ایک آنےسٹ، جتنے لوگوں کا فرق پڑا ہے، جن کو یہ تو جس کا بیمار صحیح ہو جائے نا اس سے پوچھیں، اس کی رگ رگ دعا کرتی ہے اپنے مسیحا کے لیے. تو جہاں تک شہباز کا رہا، صحیح کیا تھا غلط کیا تھا, حامد میر کو اریسٹ کیا گیا تھا, دیر آر ابصار عالم اور ایک جان صحافی ہیں, نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو بھی. جیو کے اب آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, میر شکیل الرحمان کو اریسٹ کیا گیا تھا, اور پرانی فائلیں کھولنے کے بعد تین حرف بھیجیں پرانے کیسز کے اوپر, فوکس یور سیلف فار دا فیوچر, فارگیٹ اباؤٹ دا پریویس اینماسٹیز, وی ہیو ٹو لیو پاسٹ بہائنڈ اینڈ ٹو موو فارورڈ آف کورس وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ادر تھنگس. تو آپ نے یہ کہا شہباز گل, تو بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے, اس میں ادارے انوالو ہیں, اداروں کی غلطی ہے, میں اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی. ہیو وی سیٹ دیٹ, پلیز کنٹینیو گڈ ورک, بہت شکریہ. تو میں اب ڈس آنےسٹی کی بات کرتی ہوں. مریم نواز از ڈوئنگ رانگ, ٹو ڈو رانگز ڈزنٹ میک ون رائٹ. اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور آپ کا میڈیا سیل ہے اور آپ بیڈ نیوز کو صرف اسپریڈ کرتے ہیں, ٹو ڈو کیا کہتے ہیں کہ دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے اپنے جھوٹ سے ترویج دے رہے ہیں, تو وی کینٹ ہولڈ, چور کو آپ چوری سے روک تو نہیں سکتے. یہاں بھی لوگ دن دہاڑے قتل کر کے چلے جاتے ہیں, بٹ دس از رانگ, رانگ از رانگ, ٹو رانگز ڈزنٹ میک ون رائٹ. تو ایک اور رانگ جو ہے جس میں اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے خبر پھیلائی ہے کہ جناب جو یس پاکستان اپنے پرابلمز میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کے پاس پیسے کی کمی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہیں, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, جو ان کی ایک غلط بات ہے, میں نے خود آپ کے ساتھ شیئر کی کہ انہیں اپنے بہنوئی کو 17th grade سے 21st grade میں پروموٹ کیا تھا. آئی جسٹ سے ایون ٹوڈے کہ دیر آر ڈیزرونگ پیپل. اب جنرل صاحب بھی تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ دیر آر ڈیزرونگ پیپل, آپ یوتھ کو نوکری نہ دیں, آپ سارے کے سارے ریٹائرڈ اپنے رشتے داروں کو ایڈجسٹ کرتے جائیں, تو دیٹ از رانگ. سیم وے ان کی یہ غلط بات تھی کہ انہوں نے اپنے داماد کو لے کر کے آئے تھے یہاں پہ انگلینڈ میں ورلڈ بینک کے بیچ میں, ہم اس کو کہتے ہیں. مگر اب جو ٹرپ آیا ہے اور یہ غلط خبر اس وقت گردش کر رہی ہے, اور خبر یہ ہے کہ پاکستان سے جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہے جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب 25 ارکان کو لے کے آئے ہیں, اور بھائی 25 ارکان نہیں ہیں, ڈیلیگیشن کے 4 ہیں, 4 other members ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بیوی کی ٹکٹ خود خریدی ہو. ہاؤ کین آئی ڈاؤٹ